राम हरे हरे
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा।
तो आप सबका स्वागत है इस छोटे से कार्यक्रम में। तो हम चर्चा करेंगे भगवद गीता से। शास्त्रों में वर्णन आता है भगवद गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कनिका पीता। तो भगवद गीता किंचित अधीता, इससे आप समझ गए होंगे कि भगवद गीता व्यक्ति, अभी इस महीने में आप देखेंगे कि लोग जहां जहां जा रहे होंगे, गुजर रहे होंगे, उनको हमारे हरे कृष्णा के भक्त दिखाई दे रहे होंगे। चाहे क्राउन प्लाजा में जाइए, क्राउन इंटीरियर में जाइए, या जहां मर्जी जाइए, या तो भक्त लोग आपके सार्वजनिक प्लेसेस में पहुंच रहे हैं, या आपके ऑफिस में जा रहे हैं, फैक्ट्रीज में जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, और एक ही चीज को देने के लिए जा रहे हैं। क्या चीज देना चाहते भक्त लोग? भगवद गीता। और जो सांसारिक व्यक्ति है वो पीछा छुड़ाना चाहता है। हाँ, वो सोचते ये क्या है, पीछे लग गए हमारे। हाँ, भगवद गीता अभी हमारे जीवन में हमें पता ही नहीं है। हमें लगता है कि इसके बिना भी तो लाइफ अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। किसको लगता है कि इसके बिना जीवन हमारा सही चल नहीं रहा है? हर एक को लगता है कि ये भगवद गीता के बिना हमारा जो जीवन है, बच्चों को थोड़ा उधर ही, तो हम सबको लगता है कि बिना भगवद गीता के हमारा जीवन सुव्यवस्थित है, सरल है, संपन्नता से भरा हुआ है, तो हमें क्या आवश्यकता है। लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति हम भगवद गीता से भाग रहा है, जैसे हम मुंबई में थे बीटी रेलवे स्टेशन में एक बार, तो भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो एक नौजवान युवक को हम देने ही जा रहे थे, तो वो ऐसे भागा वहां से, ऐसे डर गया कि लगा कि उसके हाथ में मैं कोबरा दे रहा हूं, सांप दे रहा हूं, जैसे आप सांप से डरते हो ना, तो वैसे वो भागा। तो उसी प्रकार से हमारी स्थिति है, या तो हम दूर भागना चाहते हैं या टालना चाहते हैं हमारे जीवन से इस चीज को। जैसे नरीमन पॉइंट के ऑफिस में हम लोग गए थे मुंबई में, तो वहां एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति का ऑफिस था, बहुत बड़ा ऑफिस था। पहले तो कैसे तो उसके अपॉइंटमेंट लेकर पहुंच गए, और जब उसने देखा कि साधु लोग आए हैं, तो वो बहुत बिजी था, दो तीन फोन कान में लगाकर अपना बिजनेस किया डेल कर रहा था, और उसको लगा कि ये लोग, उसको पता है, उसको लगा कि ये लोग केवल पैसे के लिए आ रहे हैं। जनरली लोग देखता है साधु के वस्त्र पहने हैं, तो लोगों को दूर से लगता है कि ये लोग किसके लिए आ रहे हैं, पैसे के लिए आ रहे हैं, धन के लिए आ रहे हैं। लेकिन वास्तव में सांसारिक व्यक्ति ये नहीं जानता कि इन लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है जीवन के बारे में वो सर्वोच्च है। तो वो व्यक्ति केवल कुछ अमाउंट डोनेशन लेकर भगाना चाह रहा था कि चलो छुट्टी हो जाए, आप लोगों से ज्यादा हमें टाइम बिताना ना पड़े, कुछ डोनेशन ले लो जाओ, ताकि मेरा जो बिजनेस डील है उसमें बाधा ना आ जाए। इस प्रकार से हम देखते हैं हर सेक्शन में, हर जीवन या समाज में व्यक्ति दूर भागना चाहता है। लेकिन जितना अधिक हम दूर भागना चाहते हैं भगवान को अपने जीवन में नहीं लाते गंभीरता से, तो भगवान भी हमें कभी भी गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम, जो जिस जितनी मात्रा में जिस भावना में मेरा मेरी शरणागत होता है, मेरा मेरी सरेंडर करता है, उतनी ही भावना में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूं। तो हम वास्तव में मंदिरों में जाते हैं केवल अपनी तुष्टि के लिए कि मैं बड़ा धार्मिक हूं, सामाजिक हूं, है कि नहीं, माथा टेकते हैं, और भगवान को अपने घर लाने के लिए नहीं जाते हम मंदिर। भगवान को यही सोचते कि भगवान आप मंदिर में बहुत अच्छे हो, मेरे घर तक मत पहुंचना, लेकिन आपकी जो चीजें है ना वो मुझे देना, डिमांड क्यों जाते हैं हम? डिमांड्स के लिए जाते कि नहीं? व्रत है, मन्नते हैं, इन चीजों के लिए जाते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान ये सारी चीजें पशु आदि को सप्लाई कर रहे हैं, तो मनुष्यों को क्यों नहीं करेंगे? तो हम जाते हैं और भगवान को नहीं चाहते, भगवान की वस्तुओं को, इस भौतिक जगत की फैसिलिटी को चाहते हैं। हाँ, तो ये जो एटीट्यूड है ये दुर्योधन का है। किसका है? दुर्योधन। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो जो अर्जुन है, युधिष्ठिर महाराज, भीम, नकुल, सहदेव आदि, और यहाँ का जो दूसरा पार्टी था कौरवों का, दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र आदि, तो ये दोनों पार्टी अपने अपने और पूरे भारतवर्ष के राजाओं को ले रहे थे कि हाँ ये हमारी ओर से युद्ध करेंगे। तो सब राजाओं को बांटा या अपनी ओर उन्होंने खींचा एने-केने प्रकार, यानी किसी ना किसी प्रकार से। फिर सबने देखा कि केवल एक पर्सनालिटी बचे हैं और वो कौन है? कृष्ण, द्वारकावासी, हाँ, या द्वारका नाथ, द्वारकाधीश। तो फिर कृष्ण और जो अर्जुन है, जो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे अर्जुन, तुम द्वारका चले जाओ, हाँ, उनको बुलाने के लिए, उनको बताने के लिए कि ये एक होने जा रहा है। और दुर्योधन भी जाने वाला था, दुर्योधन भी पहुंच गया। हम तो भगवान क्या कर रहे थे अब जानते, भगवान सो रहे थे। दुर्योधन पहले पहुंचता है और पहुंचने के बाद जहां भगवान सो रहे थे उनके सर के पास जाकर बैठते थे, जैसे उठेंगे उसी क्षण पकड़ूंगा इनको, उसी पहली मेरी अपनी डिमांड है। और दुर्योधन, अर्जुन तो बहुत लेट पहुंचे थे, लेट पहुंचे तो भगवान, उन्होंने देखा कि दुर्योधन सर के पास बैठा है और ये जाके कहां बैठ गए? शरणों में। तो भगवान के जो भक्त है, शास्त्र कहते हैं सारंगानां पदांबुजम्, भगवान के भक्त भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। चरणों का आश्रय लेने का मतलब है कि भगवान उनके प्रोटेक्टर है, उनके रक्षक है। तो इस प्रकार से जब ये दोनों बैठे थे तो उसी समय कृष्ण उठे, उनको पता था। उठते ही उन्होंने अपना जो दृष्टिपात है इस पर किया अर्जुन पर, कृष्ण ने। वो भगवान को अभक्तों को, नॉन डिवोटीज को देखना अच्छा थोड़ी लगेगा, अच्छा लगेगा यदि आपको ये पता चले कि आपका भाव जिसे आप ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, आपका शत्रु है, सुबह सुबह उसका मुंह देखना पड़ा, अच्छा लगता है कि नहीं? व्यक्ति कहां से इसका मुंह देखना पड़ा मुझे? तो भगवान कभी भी आनंदित नहीं होते नॉन डिवोटीज को देखने में, वो हमेशा अपने भक्तों को देखना चाहते। इसलिए आप दक्षिण भारत जाएंगे, साउथ इंडिया में जितने भी टेम्पल्स हैं, जब भगवान के मंदिर ओपन होते हैं, डिवोटीज का दर्शन खुलता है, उसी समय उनके सामने गाय को रखा जाता है। क्योंकि भगवान को दो चीजें बहुत अधिक प्रिय है, नमो ब्राह्मण देवाय, गो ब्राह्मण्य हिताय, गाय और ब्राह्मण है डिवोटीज। तो इस प्रकार से भगवान ने देखा अर्जुन को, तो भगवान अर्जुन से बात करने ही वाले थे तो उसी समय दुर्योधन कहते कि अरे नहीं, मैं पहले आया हूं, मुझसे आप बात करो। तो भगवान कहते नहीं, शास्त्र कहते हैं कि जो छोटा व्यक्ति है उससे बात करनी चाहिए, उसकी डिमांड आदि को पहले फुलफिल करना चाहिए, व्यक्ति को पूर्ति करनी चाहिए। तो फिर भी इन दोनों ने कहा कि युद्ध करने जा रहे हम आपस में और हमें आपकी सहायता चाहिए। तो भगवान ने कहा दो चीजें हैं मेरे पास। क्या थी भगवान के पास दो चीजें? एक वो पर्सन स्वयं थे और दूसरा भगवान ने कहा दो चीजों में से आपको चूज करना है। एक तो मैं हूं और मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, फाइट नहीं करूंगा, और दूसरी चीज क्या है? मेरी सेना है, जिसको नारायणी सेना कहते हैं, जो उनका सोल्जर आर्मी था, जो बहुत पावरफुल था, पूरे वर्ल्ड में किसी के पास वो शक्ति नहीं थी जिसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, कोई भी नहीं था सामर्थ्य में यदुवंश की सेना को खत्म करने के लिए, उसको केवल शिवजी का पाशुपत आश्रय ही खत्म कर सकता था। तो इन्होंने कहा कि दो चीजें, तो अर्जुन दुर्योधन ने क्या सोचा, अरे क्या फायदा इस कृष्ण का मेरे लाइफ में, ये हथियार भी नहीं उठाएगा, कुछ नहीं करेगा, तो युद्ध के लिए क्या क्यों इनको ले लूं, मुझे क्या चाहिए? क्या क्या मांगा उन्होंने? सेना। और जो अर्जुन तो फिक्स था, अर्जुन ने कहा कि मुझे आपकी सेना नहीं, मुझे आप चाहिए। तो हम मंदिर में जाते भगवान के पास, भगवान आप नहीं चाहिए, मुझे क्या दे दो? बाकी सब चीजें दे दो। तो वो लेकर कोई संतुष्ट हुआ है आजकल? नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि भगवान के अलावा सारी चीजें मैं अपने जीवन में प्राप्त करूंगा, हासिल करूंगा और मैं संतुष्ट हो सकता हूं, सुखी हो सकता हूं। गीता में कृष्ण कहते हैं अहम भोगी बलवान सुखी। व्यक्ति सोचता है कि मैं भोगता हूं, मैं एंजॉयर हूं, मैं बहुत सामर्थ्यवान हूं, मैं सुखी हूं, लेकिन असंभव है। मटेरियल नेचर के जो लॉज है वो बहुत प्रभावशाली है, वो हमें स्थिर जीने नहीं देंगे। किसके जीवन में है कि पूरा सब कुछ आरामदेह चल रहा है, सब शांति शांति है लाइफ में, है ऐसा नहीं। बिजनेस ठीक है तो शरीर ठीक नहीं है, शरीर ठीक है तो परिवार का कोई सदस्य ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक है तो गाड़ियां ठीक नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ है। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि अर्जुन वो बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने किसको चूज किया अपने लाइफ में? कृष्ण को। और चाहे पांडवों के जीवन में जितनी मर्जी विपदाएं आए, उस समय वो लोग सुखी या संतुष्टि अनुभव करते थे। और उसका परिणाम क्या हुआ? गीता के आखिरी श्लोक में कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो ध्रुवा नितिर ममा। कि जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहां विजय है, लक्ष्मी है, सामर्थ्य है, शक्ति है, सारी चीजें वहां विद्यमान है। लेकिन आजकल हम भगवान से दूर भागना चाहते हैं, अपने लाइफ में भगवान का हम सीरियसली नहीं लेते। तो उसके परिणाम हम क्या देखते हैं? कोई जॉइंट फैमिली नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, कोई रिस्पेक्ट की एटीट्यूड खत्म हो रहा है, चरित्र का विनाश हो रहा है, कैरेक्टर लेस हो रहे बच्चे बचपन से ही। तो ये सब का प्रभाव क्या है? ये सब परिणाम है ये सारी चीजों का, कि व्यक्ति भगवान को अपने लाइफ में नहीं ला रहा है, जिसके कारण हम सोचते कि समाज में अशांति क्यों है, पॉलिटिशियंस ऐसे क्यों है, ये सब चीजें क्यों है। एक ही जड़ है कि जितने मात्रा में मनुष्य भगवान के संदेश को, भगवान को भूलते जाएंगे, उतनी ही मात्रा में आसुरी प्रभाव समाज में, फैमिली में, पर्सनली अपने लाइफ में आएगा। और जिसके कारण लोग क्या होंगे? सुसाइड करने के लिए राजी हो जाएंगे। सुसाइड रेट कितना बड़ा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों एंग्जाइटीज है, क्यों स्ट्रेस है लोगों के जीवन में, सारी स्थिति होने के बावजूद भी? क्यों? क्योंकि व्यक्ति कृष्ण से दूर जा रहा है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, भगवान गीता में कहते हैं यजन्ति ही सुमेधसा। यजन्ति मीन्स मेरी पूजा करता है, मुझे समझना चाहता है, मेरी सेवा करता है। कौन? सुमेधसा। मेधा मीन्स बुद्धि। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो मुझे जानना चाहता है, और वही व्यक्ति सारे जगत में सर्वोत्कृष्ट बुद्धिमान है, दुर्लभ है जो व्यक्ति भगवान के भक्ति के संपर्क में आ रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, कहते हैं कि नहीं? है कि नहीं दुर्लभ? कितने शरीरों के बाद हमें मिलता है ये मनुष्य जीवन? 84 लाख। हर बार सुनते हैं, बचपन से सुनते आए हैं, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। लेकिन इससे भी दुर्लभ दो चीजें हैं। अभी मनुष्य जीवन तो हजारों लोगों के पास है। शास्त्र कहते हैं संसार विष वृक्षशः, कि ये जो जगत है, ये संसार है, संसार का मतलब है भौतिक जगत, या संसार का इजी अर्थ है चार चीजें, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, ये साइकिल जो रोटेट करता है, घूमता है, इसको संसार चक्र कहा गया है, इसको संसार बोला गया है। शास्त्र कहते संसार विष वृक्षशः अस्ते, कहते द्विफले अमृतोपमे। इस संसार की या ये जगत की तुलना शास्त्र एक विषमय वृक्ष से करते हैं। किससे करते हैं? विषमय वृक्ष से। तो यदि कोई विषमय वृक्ष है तो उसके फल भी आएंगे तो कैसे आएंगे? जहरीले होंगे ना स्वाभाविक रूप से। तो कैसे कोई सोच सकता है कि ये संसार जो विषमय वृक्ष है उसके फल मीठे होंगे? असंभव, असंभव है। तो इसलिए चाहे अमेरिकन्स हो, यूरोपियंस हो, रशियंस हो, अफ्रीकन्स हो, चाइनीज हो, इंडियंस हो, सब जगह क्या है, अव्यवस्था है या कष्ट आदि है। चाहे कितने ही सामर्थ्यवान देश क्यों ना हो, बलशाली क्यों ना हो, लेकिन प्रकृति के आगे उनको झुकना पड़ता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से ये जो जगत है जिसको विश्व वृक्ष से तुलना की गई है, क्यों इसकी विश्व वृक्ष से तुलना की गई है? क्योंकि इस जगत में जितने भी हमारे प्रयास हैं वो हमें दुख की ओर ले जाने वाले हैं। किस चीज की ओर? दुख की ओर। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इस वृक्ष में जितने फल है वो सारे दुख देने वाले हैं, जहरीले हैं, विषमय हैं, लेकिन द्वे फले ही अमृतोपमे। लेकिन इसमें ना दो बहुत अच्छे फल है, अमृत के समान है, मीठे है, नेक्टर है। तो वो दो फले, दो फल क्या है? कदाचित केशवे भक्ति तद भक्ता समागम। कदाचित केशवे, कि यदि मनुष्य जीवन मिला और उसका बहुत भाग्य उदय हुआ किसी व्यक्ति का, तो ये दो फलों के संपर्क में आता है, उसको भाग्यशाली व्यक्ति कहा गया है। हाँ, ये दो चीजें मनुष्य जीवन से भी अधिक दुर्लभ है। मनुष्य जीवन तो वैसे ही इजीली मिल जाएगा और वो बर्बाद भी वैसे हो जाएगा, लेकिन यदि व्यक्ति इन दो चीजों के संपर्क में आता है तो वो वास्तव में भाग्यशाली है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली तब समझते हैं जब हमारे पास बहुत अधिक धन हो, सौंदर्य हो, ज्ञान हो, जन्म अच्छे कुल में हो, तो हम क्या सोचते हैं? बहुत भाग्यशाली है ये व्यक्ति, कि जन्म लेते ही सोने के चम्मच से खा रहा है, कहते कि नहीं? तो कुंती महारानी कहती है जब कृष्ण महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और कृष्ण निकल रहे थे वापस द्वारका के लिए, तो कृष्ण अपने रथ में चढ़ ही रहे थे, तो उस समय कुंती महारानी दौड़ी कि हे कृष्ण आप अभी जा रहे हैं? उनको दुख हो रहा था, बल्कि पूरे भारत वर्ष की रानी थी, पांच ऐसे पुत्र थे जिनका वर्णन अभी तक हम करते हैं। ऐसी कोई है माँ, गौरवशाली माँ है कोई इस संसार में कुंती के समान? नहीं। तो ऐसे कुंती महारानी जब कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद निकले, तो उस समय वो कहती है नमस्ते त्वाभ्याम पुरुषः प्रकृते परः। वो कहते कि मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और कुंती महारानी कहते कि हे कृष्ण आप सबके लिए दुर्लभ है, लेकिन उन व्यक्तियों के लिए बहुत कठिन है आपको प्राप्त करना जिनको क्या हो गया है, घमंड हो गया है, गर्व हो गया है। तो भगवान के चरणों में व्यक्ति तब तक समर्पित नहीं होता, सरेंडर नहीं होता, जब तक उसने अपने हृदय में क्या रखा है, घमंड, गर्व, फॉल्स ईगो। जिस प्रकार से एक बार जीसस क्राइस्ट एक चर्च के बाहर थे, तो उस समय एक व्यक्ति आया, वो चर्च में गया और वो जाकर भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मैं तो बहुत नीच हूँ, पतित हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, इतने सारा आपकी कृपा से मेरे पास है, दीनहीन हूँ। इस भावना से भगवान को प्रार्थना कर रहा था, प्रणाम कर रहा था। उसी समय दूसरा आ गया, बिल्कुल ऐसा गर्व में, घमंड में चलते हुए, कहा कि हे भगवान क्या है, देखो ये क्या करता है, मैं आपका इतना, मैं रोज आता हूँ आपके डोनेशन बॉक्स में, इतना डोनेशन डालता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये सब बोलते हुए दोनों बाहर निकल गए चर्च से। तो ये जीसस क्राइस्ट अपने फॉलोअर्स के साथ बाहर बैठ खड़े थे, तो उन्होंने कहा अपने सारे डिसाइपल्स को कि दो लोग अंदर गए लेकिन एक ही व्यक्ति की प्रार्थना भगवान ने सुनी। कितने व्यक्ति की सुनी, क्यों सुनी? युगो, युगो से अहंकार से रहित था, घमंड नहीं था, गर्व नहीं था। तो उसी प्रकार से कुंती महारानी कहती है कि वो व्यक्ति आपके शरण में जाना असंभव है जिनको घमंड या गर्व आदि है, मदमत्त हो गए हैं, पागल हो गए हैं। कौन से चीजों से? चार चीजों से कुंती कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्रीभि मद अपमान, मद मीन्स अहंकार। तो कुंती कहती कि हे कृष्णा, चार लोग आपके शरण में जाना बहुत कठिन है, क्योंकि उनको घमंड है। किस चीज का? सबसे पहले तो घमंड है जन्म। जैसे कोई बहुत उच्च कुल में जन्म लेता है तो उसको घमंड रहता है कि नहीं? कहते क्या मैं नहीं जा सकता, मैं क्यों झुकूं भगवान के सामने। कई बार हम समझते हैं क्या यह है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं समझता कि भगवान के सामने मैं नहीं झुकूंगा, लेकिन मुझे सारे बाकी भौतिक प्रकृति के सामने झुकना पड़ रहा है। हमें बुढ़ापा आ रहा है, हम क्या झुक रहे कि नहीं उसके सामने? स्वयं ही झुक रहे हैं। बुढ़ापा आता है तो आप कह सकते नहीं देखता हूं, कैसा आते हो आप मेरे पास? नहीं, आपको आलिंगन करना पड़ता है। नो चॉइस, कुछ नहीं कर सकते। आपके कॉस्मेटिक्स, आपके ब्यूटी पार्लर्स, आपके डॉक्टर्स, आपके स्किन ऑपरेशंस आपके साथ नहीं देंगे। ये सब चीजें नहीं साथ देंगे, हमें आलिंगन करना पड़ेगा। नो चॉइस, कोई चॉइस ही नहीं है। तो उसी प्रकार से हम सोचते कि भगवान के सामने नहीं झुकूंगा, तो लेकिन इन सब चीजों के सामने हमें झुकना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं आपको हेजिटेशन होता है मेरे सामने झुकने के लिए, तो मेरी प्रकृति बहुत निर्दयी है। क्या है? निर्दयी, दया नहीं है उसमें, वो आपको फोर्सफुली झुकाएगी। माया जिसको कहते, क्या कहते हैं? माया। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया नेतां तरन्तिते। कृष्ण कहते कि मेरे जो प्रकृति है, मटेरियल नेचर है, माया है, बहुत प्रभावशाली है। इसको कोई सामना नहीं कर सकता, कोई ऐसा बलवान व्यक्ति नहीं है। तो पहला हमें जो घमंड या ईगो या अहंकार आता है हमें, वो हमारे जन्म के कारण, यहाँ उच्च कुल में मैंने जन्म लिया है, जन्म। और दूसरा क्या है? जन्म ऐश्वर्य, दूसरा है ऐश्वर्य, धन संपदा फैसिलिटी। हाँ, इजीली व्यक्ति नहीं शरणागत होता है क्या? नहीं, व्यक्ति कहते नहीं नहीं, क्यों झुकूं, अहंकार रहता है व्यक्ति के पास, तो व्यक्ति नहीं झुकना चाहता। जन्म ऐश्वर्य, और तीसरी चीज क्या है? जन्म ऐश्वर्य श्रुतः, श्रुत मीन्स नॉलेज, ज्ञान। तो जो ऐश्वर्य है वो हमारे, हम सोचते हैं सुख का कारण है, लेकिन वो हमारे दुखों का कारण बनता है। कितनी बार, जैसे हमारे लोग केनिया में मंदिर है बहुत सारे इस्कॉन के, तो केनिया के भक्त लोग हमें कह रहे थे, हमारे एक मित्र है, तो कह रहे थे कि जन्माष्टमी के समय हम अलग अलग लोगों को इन्विटेशन देने गए हैं बहुत बड़े बड़े घरों में, तो घर में गए, घुसते ही रहे थे हम, तो हमारे पीछे 7-8 अफ्रीकन्स भी घुसे, जिनके हाथ में तलवार चाकू और ऐसी सब चीजें थी, जो लुटे रहे थे बदमाश, तो वो भी घुसे या अंदर भक्तों के कोने में बैठते के लिए, तो वो आए थे किस लिए? लूटने के लिए धन। तो अकेले एक लेडी घर में थी माता जी की, तो वो लोग आते ही ये भक्त लोग बैठते के लिए, उन्होंने कहा उस लेडी को कि धन निकालो, पैसे दे दो। अभी वो क्या कह रही है? पैसे नहीं है। तो इतने बदमाश होते हैं अफ्रीकन, और वहां टफ है लाइफ। केनिया नदी में हमारे जो भक्त हमारे मित्र कह रहे थे कि वहां बेरोजगार और लूटना, ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट है। इंडियन कोई व्यक्ति वॉक नहीं कर सकता, चल नहीं सकता इंडियन। हमारे डिवोटी माता जी है इंडिया से, पहले दिल्ली में थी अभी केनिया में है, तो वो अपना जपमाला लेकर अपने कार में जा रहे थे, तो जपमाला ऐसे आता ड्राइविंग कर रहे थे, तो सिग्नल में जब कार रुकी, शीशा खुला था, तो उस अफ्रीकन ने उसको इधर चाकू लगाया, कहा कि एक ना ये दे दो। अभी उसको लगा हाथ में रखा है कुछ पैसे धन आदि होगा, ये माला ही ले गया। उनका फोन आया, टावारी में माला भेजो, टावारी उनको मायापुर से माला भेजो। तो मतलब वो कह रहे थे कि इंडियन आदि को चलना अकेले बहुत टफ है। शीशे आपके कार के ओपन रह गए तो आते आपको कहेंगे पीछे कुछ हो रहा है, हाथ डालेंगे आपके डैशबोर्ड पर, और आपका मोबाइल सामने रखते ना कार के आगे, सब चीजें उठा के गाय। इतना तो वहां जब ये लोग आए अंदर, इन्होंने कहा धन निकालो, लेडी कहते नहीं नहीं, तो उन्होंने कहा एक तो कान पकड़ा उसका, कहा कि आप धन दे दो नहीं तो क्या करूंगा, कान को काटूंगा। और वो निर्दयी है। उसी समय उसने क्या किया, उसका कान पकड़ा, कान को काट डाला। तो भक्तों को याद आया कि चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए। तो हमारा ऐश्वर्य हमें भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए बाधा बन जाता है कई बार। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं, कुंती महारानी ने कहा कि हे कृष्ण, ये चार चीजों से यदि व्यक्ति को घमंड आता है तो वो क्वालिफाइड नहीं है आपका शरण ग्रहण करने के लिए। पहले चीज तो थी जन्म, दूसरा है ऐश्वर्य, तीसरी है श्रुतः। श्रुत मीन्स नॉलेज, ज्ञान। कोई व्यक्ति भौतिक रूप से बहुत पढ़ा लिखा है, PhD और MBA और बहुत डिग्रियां प्राप्त की है, तो अपने आप को बड़ा गर्वित महसूस करता है। BTech, IIT वाले ये सब लोग सोचते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें क्या आवश्यकता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं यही शिक्षा आपको भारी पड़ेगी, क्योंकि भौतिक शिक्षा से आप जीवन के कष्टों को दूर नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। चंद्रमा ऐश्वर्य श्रुता और स्त्री, स्त्री मीन सौंदर्य। जैसे आप देखो जो बड़े बड़े सौंदर्यवान है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, फिल्म स्टार्स, क्रिकेट स्टार्स, वो झुकते क्या भगवान के सामने? नहीं, वो अपने आप को भगवान समझते हैं। क्या समझते हैं? हम भी भगवान हैं, हमारे सामने सब लोग झुक रहे हैं, हमारा गुणगान कर रहे हैं, हमारे नामों का कीर्तन कर रहे हैं। तो कुंती ने कहा कि हे कृष्णा, ये चार प्रकार के जो लोग हैं वो आपके शरण ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि इन चार चीजों से इनके हृदय में घमंड, अहंकार की भावना भर जाती है। इसलिए इंद्र को भी घमंड हो गया था कि नहीं, मैं स्वर्ग का राजा हूं। उसको लगा, अरे ये वृंदावन के लोग मेरी पूजा नहीं कर रहे। अभी उसको पत्र, वो भूल गया कि जिसने मुझे इंद्र बनाया है, कौन है वो? कृष्ण है। ब्रज में कृष्ण छोटी सी लीला कर रहे थे। तो भगवान ऐसे गर्व को चूर्ण करने के लिए अपना लीला करते, कार्य करते हैं। बड़े बड़े गर्व वाले लोगों को विनाश कर देते, गर्व को चूर चूर कर देते हैं। और भगवान ने कैसे इंद्र के गर्व को चूर कर दिया? सिंपल, जस्ट कृष्ण ने, बल्कि देवताओं का एक प्रॉब्लम है, अभी सब जगह पूजा हो रही है इंद्र की, और एक छोटे से गांव वालों ने पूजा नहीं की, इन्होंने नहीं की। कुछ लोग अकड़ जाते हैं ना छोटी सी चीज के लिए, बाकी सब कुछ ठीक है, छोटी सी चीज के लिए लाइफ बर्बाद कर देते हैं। सब जगह उसकी पूजा हो रही है इंद्र की, छोटे से वृंदावन के गांव वालों ने, कृष्ण ने कहा नहीं, आवश्यकता नहीं है। भगवान ने ये शिक्षा देने के लिए, क्योंकि देवताओं की शरण ग्रहण करना, उनकी पूजा करना इज नॉट नीडेड, आवश्यक नहीं है, जब हम भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। क्योंकि देवता गण ही भगवान का सेवा में लगे हैं। तो भगवान ने केवल जो इसको उठाया, गोवर्धन को धारण किया, और इंद्र का जो गर्व है उसको चूर चूर कर दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुंती महारानी कहती है कि हे कृष्णा, ऐसे चार प्रकार के लोग आपका जो शरण है वो ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों नहीं ग्रहण कर पाते? क्योंकि उनको इन चार चीजों के कारण गर्व या घमंड या अहंकार होता है। इसलिए शास्त्र इस चीज पर जोर देते हैं कि हमें अपना ये जो मनुष्य जीवन है उसमें दो चीजें बहुत भाग्य से प्राप्त होती है, दुर्लभता से प्राप्त होती है। बाकी जो भी चीजें हैं आपके जीवन में, जो भौतिक सुख आने वाला है, धन आने वाला है, आपका फेम आने वाला है, नेम आदि, ये आपके पूर्व कर्मों के अनुसार मिलने वाली है सुविधाएं, ये निश्चित है। लेकिन ये दो चीजें हैं बहुत भाग्य से मिलती है। क्या? कदाचित केशव भक्ति तद्भक्ता समागमः। दो चीजें, एक है भगवान के प्रति भक्ति, भगवान केशव, किसके प्रति? कदाचित केशव भक्ति, भगवान कृष्ण जिनका एक नाम केशव है। क्यों भगवान का नाम केशव है बताइए, या मैं ही बोलता रहूं, आप लोग भी बोलिए, क्यों है केशव? अब वृंदावन गए सब लोग, यमुना गए, यमुना केशी घाट गए, यमुना के किनारे है ना केशी घाट बना हुआ है, सुंदर सा वो भरतपुर के राजा ने बनवाया हुआ वो घाट है पत्थरों का, केशव घाट गए ना, तो केशव घाट क्यों प्रवर बना केशव है? दो कारण है, एक तो भगवान ने केशव नाम का जो आसुर है जो घोड़े के रूप में आया था वृंदावन में उसको मारा था, और दूसरा भगवान के केश बाल बहुत सौंदर्यवान घुमराल है आकर्षक है इसलिए उनको केशव कहा जाता है। तो शास्त्र कहते हैं कि दो चीजें इस संसार में दुर्लभ है और इन दो चीजों के संपर्क में यदि कोई व्यक्ति आता है तो वो सर्वोच्च भाग्यवान है। कदाचित केशव भक्ति, केशव कृष्ण के प्रति भक्ति, और दूसरी चीज क्या है? तद भक्तान समागम, उनके भक्तों का एसोसिएशन, उनके भक्तों का संग लाभ, ये दो चीजें बहुत दुर्लभ है। बाकी चीजें तो आपको मिलती रहेगी आपके भाग्य से, धन आगे ये सब चीजें आती रहेगी, भौतिक सुविधा आएगी और जाएगी भी, लेकिन ये दो चीजें के संपर्क में व्यक्ति आया है तो भाग्यवान है। इसलिए शास्त्र कहते हैं संसार विष वृक्ष से, इसलिए संसार विषमय वृक्ष है, उसके सारे फल विषमय हैं, लेकिन फिर भी दो फले इस संसार को बहुत अच्छे आते हैं। दो फल, एक है भगवान के प्रति भक्ति और दूसरा है उनके भक्तों का संग लाभ, जिसको साधु संग कहते हैं। तो ये दो चीजें हैं जिस व्यक्ति के, या दो चीजों से व्यक्ति संपर्क में आया है तो वो व्यक्ति असली भाग्यवान, हमें अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए। आप सब लोग क्या हो, आपको लगता है कि भाग्यवान हो या अभी कुछ कमी महसूस हो रही है? मृत्यु आखिरी श्वास तक कमी महसूस होती है इस लाइफ में, होते कि नहीं? और चाहिए, क्योंकि ग्रेड इतना है, क्योंकि हम बने ही नहीं, क्योंकि हमें आनंद और शास्त्र कहते ओशियानिक चाहिए, मतलब सागर के जैसा आनंद चाहिए हमें, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा भगवान का अंश है, और वो अंश ऐसे छोटे थोड़े मोटे आनंद के लिए लालायक नहीं है, वो ऐसा आनंद चाहता है जो सागर के समान विशाल गहरा हो, डूबना चाहता है, लेकिन जीवन में मिलता है हमें नहीं। हम छोटे छोटे आनंद की तलाश में कभी मॉल में परेशान, तो कभी गार्डन में जाते, गार्डन में जाते तो कभी मतलब ढूंढ रहे, सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर होता हम तो शरीर को तुष्ट करना इजी है, लेकिन आत्मा जो भगवान का अंश है, शाश्वत है, नित्य है, इटर्नल है, तो उसके लिए तो आध्यात्मिक आनंद ही चाहिए, आनंदामृतिवर्धन, वो ऐसी चीज की खोज में है। तो इसलिए भगवद गीता और ये शास्त्र हमें याद दिलाने के लिए, इस चीज की याद दिलाने के लिए कि मुझे शाश्वत आनंद चाहिए, और वो मुझे आनंद इस जगत में मिलने वाला नहीं है। ये पहला स्टेज है स्पिरिचुअलिटी में कदम रखने का, पहला धरातल है। वही व्यक्ति वास्तव में आगे बढ़ सकता है जिसने ये अनुभव किया है या अंडरस्टैंड किया है, समझ लिया है कि ये भौतिक जगत के सारे प्रयास मुझे कभी भी सुखी नहीं बना सकते। चाणक्य पंडित ने वही कहा, कश्य सौख्य निरंतरम, कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो हमेशा 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 सुखी है? कोई है? नहीं है। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम इस जब तक इस संसार जगत में सफलता सोचते कि भौतिक सफलता मिलनी चाहिए तभी मैं संतुष्ट हो सकता हूं। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर है, क्या नाम, बिल गेट ना, जो सबसे धनवान व्यक्ति है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा धन उसके पास है, इतना होने के बावजूद भी उसने क्या किया, सारा चैरिटेबल वर्क में लगा हुआ है, अभी सब चीजें छोड़कर जस्ट चैरिटी ह्यूमैनिटी सर्विस इन सब चीजों में लगा है। क्यों? इतना सब होने के बावजूद भी देखा है कुछ तो खाली है, कुछ तो कमी है। तो इसलिए भगवद गीता उस कमी क्या है उसका हमें याद दिलाती है, उस कमी को सिखाती है, और वो कमी यही है कि हमने अपने जीवन में कृष्ण को ऐड नहीं किया। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए, कि अभी जीवन बचा ही कितना है, भगवत कृपा से मैं ये दो चीजों के संपर्क में आया हूं, तो मुझे भगवान की जो भक्ति है उसको गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि भगवत भक्ति यतो मत ततो पत नहीं है। लोग सोचते मेरा जो मत है ना वैसे के अनुसार है, मुझे ऐसे लगता है वैसे होना चाहिए। नहीं, शास्त्र क्या कहते, साधु क्या कहते, गुरु क्या कहते, उसके अनुसार। साधु, शास्त्र, गुरु, ये तीन चीजें हैं। जब तक हम इन तीन चीजों को स्वीकार करते हुए भगवान को प्रसन्न नहीं करने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन, शास्त्र कहते समय वही केवल। तो भाग्यवान वो व्यक्ति है जो इन दो चीजों के संपर्क में आया, भगवान की भक्ति और भक्तों के संपर्क में। और भक्ति भी तभी हमें मिल सकती है जब हमें किनके संपर्क में हम बने रहे, भक्तों के संपर्क में। क्योंकि भक्त प्रभुपाद कहा करते थे, जो फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, कृष्णा इज द प्रॉपर्टी ऑफ हिज प्योर डिवोटीज, कि कृष्णा उनके शुद्ध भक्तों की संपदा है। भगवान अपने आप को किसके संरक्षण में रखते हैं, भक्तों के संरक्षण में। इसलिए भक्तों के पास भगवान को देने का सामर्थ्य है कि नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इसी कारण से जो भगवान के भक्त हैं उनका एक नेचर है। क्या नेचर है? भगवान के भक्तों के कई नाम हो सकते हैं, उनको साधु कहा जाता है, भक्त कहा जाता है। तो जो भगवान के भक्त हैं उनका स्वभाव का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है, या साधु का वर्णन आता है। साधु केवल अपने वस्त्र या वेशभूषा से नहीं बनता व्यक्ति, साधु किससे बनता है? अपने गुणों से। भागवतम आदि में कोई भावी वर्णन नहीं आया कि साधु के लक्षणों को बताइए, कौन साधु है, कौन भक्त है, कहां भी नहीं वर्णन किया कि ये साधु के ऐसे कपड़े होते हैं, ऐसे बाल होते हैं, ये सब वर्णन नहीं है। वहां जब देवहूति कपिल देव की जो मां थी, उन्होंने पूछा कि आप बताओ साधु के लक्षण, क्वालिटीज, गुण क्या है, किसको साधु कहा जाए, भक्त कहा जाए। तो कपिल देव कहते हैं भागवतम में, तितिक्ष्वः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनः, पहला गुण बोलते हैं कि साधु कौन है जिसमें ये पहला गुण होना चाहिए। तितिक्ष्वः, तितिक्ष्वः मींस सहनशीलता। कौन सा गुण? सहनशीलता। कितना कठिन है आजकल, क्यों सारा ब्रेक हो रहा है, फैमिली ब्रेक हो रहा है, संबंध ब्रेक हो रहे हैं। सहनशीलता किसी में भी नहीं रही, अरे ये सहनशीलता। बच्चों में, बच्चे अपने माँ बाप को टॉलरेट नहीं करते। लोग आजकल सोचते सहन करना में अत्याचार हो रहा है, आजकल ये मॉडर्न वर्ड दिया गया है। थोड़ा भी सहन करते हैं तो क्या हो रहा है, अत्याचार, और उसके लक्षण आप देख सकते हैं, जॉइंट फैमिली खत्म, ब्रेकिंग फैमिली खत्म हो रहा है सारा, क्योंकि सहनशीलता को सिखाया नहीं जा रहा है। हाँ, तो पहला जो गुण है साधु का वो सहनशीलता है। और क्यों सहनशीलता है साधु या भक्त के अंदर? क्योंकि उनमें दूसरा गुण है, क्या है? तितिक्ष्वः कारुणिकः, कारुणिकः मीन्स करुणा, कंपैशन, दया, हम कहते ना अहिंसा परमो धर्मो, कहते ना दया की भावना, ये दया की भावना है। तो वास्तव में ये सर्वोच्च गुण है भगवान के भक्तों में। इसी कारण से वो देखते हैं कि जीवन लोग दुखी होने का एक में कारण है कि उन लोगों के पास कृष्ण नहीं है, और इसकी जानकारी केवल वही भक्तों को है, साधुओं को है। इसी कारण से आप देखते हैं श्रील प्रभुपाद 70 साल की आयु में अमेरिका गए। क्या जरूरत पड़ी है? अपने लिए तो नहीं गए, या उनके पास कुछ धन चाहिए था, ये चाहिए था? नहीं, केवल दूसरों के लिए। ये उनका प्राइम मुख्य गुण है, दया। कि साधु के हृदय से आप दया को अलग नहीं कर सकते, वो साधु ही नहीं है। जैसे एक महान साधु थे महाराष्ट्र में, जिनका नाम था एकनाथ। तो एक बार वो स्नान करने गए गोदावरी में, तो गोदावरी में जब वो स्नान कर रहे थे तो उस समय बहुत बाढ़ आ गई थी। उन्होंने देखा एक बिच्छू भी है उसमें, उन्होंने उसको उठाया और उठाकर क्या किया, उसको बाहर लाना चाहते थे। जैसे उस बिच्छू को उठाते थे तो बिच्छू डंक मारता था, तो फिर नीचे गिरा। एक बार नहीं, दो बार, चार बार, छह बार, सात बार, और ये सारा दृश्य एक व्यक्ति तट पर बैठकर देख रहा था कि क्या हो रहा है। जब उस व्यक्ति ने देखा उन्होंने कहा अरे छोड़ो ना, ये बारंबार ये काट रहा है, क्या पड़ी है आपको, इसको छोड़ दो। कहते बिच्छु का नेचर गुण क्या है, काटना ही है, दंड मारना है। हाँ, तो इसी प्रकार से मेरा भी स्वभाव क्या है, दया करना, उसको बाहर लाना, निकालना चाहता है बाढ़ से, भौतिक जगत से बाहर। तो उसी प्रकार से भगवान के भक्तों का स्वभाव है, जिस कारण से साधु या भगवान के भक्तों को कहा गया है पर दुखी दुखी, दूसरों के दुख में वो दुखी होते हैं। अभी इस संसार में पूरा उल्टा है, पर दुखी सुखी। हम कब सुखी होते हैं, जब दूसरे का खत्मा हो जाए, क्योंकि इस जगत में ईर्ष्या और द्वेष ये नेचर है इस जगत के लोगों का। एक व्यक्ति था जिसने बहुत भगवान का प्रार्थना किया, भजन किया और भगवान प्रकट हो गया और कहा कि क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जो आप मांगे वो मैं जो मांगूंगा वो तुरंत प्रकट हो जाए, पूर्ति हो जाए। तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो आया घर, घर आते देखा घर बहुत छोटा है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, बड़ा घर चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा था कि जब तुम मांगोगे ना तुम्हें एक चीज मैं दूंगा तो, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को दो चीजें मिलेगी। कितनी मिलेगी, दो चीजें। उन्होंने कहा चलो एक तो मिल रही है, पड़ोसी को दो मिल रहे हैं, कोई ट्रबल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसने मांगा घर आते कि मुझे घर चाहिए, तो पड़ोसी को दो घर, देखकर कि पड़ोसी के दो घर बन गए, लंबा सांस लिया क्या हो रहा है। फिर देखकर इसने कहा लंबी गाड़ी, दो गाड़ी होनी चाहिए। तो पड़ोसी के आगे कितनी गाड़ियां खड़ी थी, दो, हर चीज दो मिल रही थी वहां। अभी परेशान हो रहे, ज्यादा समय तक टॉलरेट नहीं करेगा क्योंकि गुणी नहीं उसका अंदर, स्वभाव ही नहीं है, नेचर ही नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष है भरा हुआ है। तो उसने देखा कि तपस्या मैं करूं, भजन मैं करूं, फ्री का माल वो उठाए, कैसे है। फिर उन्होंने क्या किया, कहा कि हे भगवान मेरी एक आंख चली जाए, क्या हो जाए, एक आंख चली जाए, ताकि पड़ोसी की कितने जाए, दोनों। ये जगत के लोगों का स्वभाव है, पर दुखी सुखी। लेकिन भगवान के भक्तों का नेचर क्या है, पर दुखी दुखी। वो जानते हैं कि संसार में लोग दुख का एक मेव कारण है कि उनके जीवन में भगवान नहीं है। इसलिए आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप गंभीरता से भगवान की भक्ति को लीजिए, और भगवान की भक्ति को गंभीरता से लेना मीन्स दो चीजें करना, साधु संगे कृष्ण नाम, यही मात्र चाह है, साधु संग, और दूसरा है
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
भगवान से कोई चीज मांगनी है तो शास्त्र कहते दो ही चीजें मांगो कि हे भगवान मेरे मृत्यु के अंतिम क्षण तक मुझे भगवान के भक्तों का संग लाभ दे दो बस। क्योंकि बारिश बाकी सांसारिक चीजें तो आने वाली है और वो जाने वाली है। हाँ, तो साधु संगे और कृष्ण नाम, हर समय मैं आपके नामों का उच्चारण करता हूँ। ये दो चीजें जिसके पास है वो धनवान है, वो भाग्यशाली है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान को अपने जीवन में लाना, रोज विदाउट फेल भगवान के नामों का जप करना, भगवत गीता के बारे में पढ़ना, भगवत गीता में उपदेशों को पढ़ना। केवल भगवत गीता को पढ़ने मात्र से, सिंसियरली और हरि नाम का जप करने मात्र से आप इतनी संतुष्टि अनुभव करोगे, आप करोड़ों रुपए कहां खर्च करके नहीं प्राप्त कर सकते। करोड़ रुपए खर्च करोगे फिर उसको कमाने के लिए कितना बेलन लाटने पड़ते हैं, धन अर्जन करने के लिए व्यक्ति को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, नॉट इजी है कि नहीं। तो इसलिए सरल विधि भगवान ने दी है। तो इसलिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि दो चीजों की आकांक्षा रखिए, एक भगवान का भक्तों का संग हमेशा लाभ हो। इसलिए शास्त्र कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र का लव मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि। भक्तों के जो संग है वो, और दूसरा है भगवान का पवित्र नाम, क्योंकि भगवान का पवित्र नाम में इतना सामर्थ्य है कि वो भगवान को खरीदता है, भगवान अपने हो जाते हैं। इसलिए दो चीजें यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में करता है तो व्यक्ति जहां मर्जी रहे, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, बालक है, गरीब है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, ये सब मायने नहीं रखता। इसलिए ये दो चीजों को व्यक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए, और यदि हम इन दो चीजों को गंभीरता से लेते हैं तो कृष्ण भी हमें गंभीरता से लेंगे, है कि नहीं? जैसे कोई व्यक्ति आपके घर आता है, उसका आप बहुत अच्छा स्वागत करते हैं, तो वो भी व्यक्ति अपने घर में जब आप उनके घर जाओगे तो कैसे करेगा? गंभीरता से स्वागत करेगा, उसी प्रकार से है। क्योंकि कृष्ण पर्सन है, वो कोई मूर्ति नहीं है, केवल फोटो नहीं है, इस पर्सन व्यक्ति है। तो जब जितना आप उनको गंभीरता से लोगे, भगवान भी आपको उतनी मात्रा में गंभीरता से लेंगे। इसलिए भगवत भजन शास्त्र कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना बहुत इजी है, बल्कि इस जगत में सांसारिक व्यक्ति को प्रसन्न करना इजी नहीं है, बहुत टफ है। ये जगत में आप किसी को भी प्रसन्न करने का प्रयास करो, इम्पॉसिबल, कठिन है। लेकिन भगवान कहते हैं, मैं तो थोड़ी सी चीज से प्रसन्न हो जाता हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम पान फूल जल आदि, बहुत बड़ी डिमांड्स करते हैं। इस संसार में व्यक्ति डिमांड्स के बाद डिमांड्स, डिमांड्स के बाद छोटी सी कुछ कमी हो जाती है तो वो अप्रसन्न हो जाता है। केव पर पानी फेर देना जिसको कहते हैं, ये चीज है। इतना इजी लाइफ मिला है, बुद्धि है, शरीर अभी काम करता है, तो क्यों नहीं अभी एक्टिव हो जाए? शरीर 5-10 साल में सारी हड्डियां आवाज करने लगेगी, सुनना नहीं आएगा, चलना नहीं आएगा, बैठने का सामर्थ्य नहीं होगा, मन काम नहीं करेगा, बुद्धि नष्ट होने लगेगी, तो क्या भगवान का नाम लेगा व्यक्ति? क्या सत्संग करेगा? क्या भगवत गीता को पढ़ेगा? कृष्ण तभी प्रसन्न होते हैं जब आप उनको फ्रेश फूल ऑफर करो, सड़ा हुआ सूखा हुआ फूल भगवान ये ले लो, नहीं, अभी शरीर अच्छा है, ये बोल सकता है, चल सकता है, सेवा कर सकता है, भगवान के नाम का उच्चारण कर सकता है, कृष्ण कथा को सुन सकता है, वृंदावन आदि धामों में जाकर लीला स्थलियों का दर्शन कर सकता है, प्रणाम कर सकता है, शरीर से सारी सेवा कर सकता है, तो आगे क्यों नहीं? इंतजार क्यों है ना, क्यों इंतजार करें? तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि घर को आग लगने से पहले कुआं खोद के रखता है, कुरान कहते हैं। मूर्ख व्यक्ति कौन है? आग लग गई और सोचते हैं अभी मैं पहले कुआं खोदता हूं, तब तक क्या मिलेगा उसके हाथ में? राख। तो वही चीज है कि शरीर माध्यम खल धर्म साधना, शास्त्र कहते हैं कि ये शरीर माध्यम है परम धर्म को प्राप्त करने का। तो ये शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है। व्यक्ति पूरे भारत का कंट्रोलर हो सकता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ सकता है कि मैं इतना बड़ा कंट्रोलर हूं, पूरे भारत का प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वो अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर सकता। कर सकता है कोई? नहीं। सुबह आपने जो अर्जेस हैं, मल मूत्र आदि, उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो बाकी चीजों में क्या वो अपना घमंड दिखाए कि मैं बहुत बड़ा कंट्रोलर हूं? नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें ये भावना जाननी चाहिए कि मैं वास्तव में बहुत छोटा हूं। कितना छोटा हो, वैसे भी आत्मा का साइज क्या है आप जानते हैं? क्या साइज है आत्मा? कितना छोटा है आत्मा? कितना छोटा है? गीता में कृष्ण कहते हैं, बालाग्र शतभागश शतधा कल्पितश्च, कि सर के बाल को ले लो, उसका अगला जो हिस्सा है उसको 10,000 भागों में काटो, बिल्कुल टिप ऑफ द हेयर उसको 10,000 भाग करो, इम्पॉसिबल। किसने अभी किया नहीं अभी तक? उतना साइज है इस आत्मा का, जो इतना छोटा इतने बड़े बड़े शरीरों को चलाता है, हाथी हमारा इतना बड़ा शरीर, तो हम इतने छोटे हैं, लेकिन फॉल्स ईगो के कारण, अहंकार के कारण, अहंकार का गुब्बारा, घमंड का गुब्बारा जब पड़ता है तो हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते, लेकिन कृष्ण की आंखों में हम इतने हैं, नगण्य हैं, छोटे हैं, कुछ भी वैल्यू नहीं हमारा। हाँ, तो इस प्रकार से हम वास्तव में है कितने छोटे। प्रभुपाद के पास एक अमेरिकन आया, उसने कहा मैं इतना बड़ा हूँ। प्रभुपाद ने कहा आप जानते हो क्या कितने बड़े हो तुम? उन्होंने कहा भगवान महाविष्णु के श्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं और उस ब्रह्मांड हजारों करोड़ों ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड जाप रह रहे हो। इस ब्रह्मांड में भी 14 लोक हैं। कितने लोक हैं? 14 लोक हैं। भू है, भूवर है, स्वर्ग, महर्लोक, तपोलोक, सत्यलोक, पाताल, नीचे 7 लोक हैं और उसमें भी एक पृथ्वी है, 14 में से एक पृथ्वी। और पृथ्वी में भी एक कितने सारे देश है, उसमें भी कौन सा देश है आपका? भारत। और भारत में भी कितने राज्य है, उसमें भी आपका एक हरियाणा। हरियाणा में भी कितने नगर है, उसमें अपना फरीदाबाद। फरीदाबाद में भी कितने सारे सेक्टर है, अभी तो बढ़ते जा रहे, ग्रेटर फरीदाबाद भी आ रहा है, उसमें से आपका सेक्टर 31 है ना, 31। और 31 में भी कितने कॉलोनीज है और क्या है घर, उसमें भी आपका एक कॉलोनी, पता नहीं क्या नाम है इसका, कुछ है क्या नाम, जैसे वहां अशोक एन्क्लेव हम जा रहे थे, तो वैसे यहाँ कुछ नाम हो सकता है। और उसमें भी इतने सारे घर कोठियां हैं, उसमें से आपका एक है। और उस कोठी में भी कितने सारे रूम्स है, उसमें भी एक बेड है। इसमें इतने सारे लोग है, उसमें से हम हैं। तो हम कितने बड़े हैं, हमने इतने नगण्य है, छोटे हैं। जिस प्रकार से भगवान कहते हैं कि इस चीज को जानना कि हम कृष्ण महान है और मैं क्या हूं, बहुत छोटा हूं, इस भावना को लेकर हमें भगवान की ओर बढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। क्योंकि भगवत भक्ति बहुत प्रैक्टिकल है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम्, इसको जितना प्रैक्टिस करते हो उतना सुख अनुभव करते हो, आनंद अनुभव करते हो। तो प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है भगवत भक्ति की। क्यों? क्योंकि मृत्यु आने से पहले हमें तैयारी करनी है। इसलिए पूरे विश्व में लोग ये सब कर रहे हैं, भगवत भक्ति कर रहे हैं। वो व्यक्ति बहुत अधिक दुर्भाग्यशाली है कि जिसके हाथ में हीरा आया और उसने क्या किया, फेंक दिया। जिसके हाथ में आया ही नहीं उसको इतना दुर्भाग्यशाली नहीं है। इसलिए शास्त्र बारंबार एक चीज पर जोर देते हैं कि क्यों नहीं, क्यों हम वेट करें, क्यों अपना समय गवाएं, क्यों नहीं भगवत भक्ति को स्वीकार करें। तो भगवत भक्ति को स्वीकार करना मतलब ये है भगवान के नामों का उच्चारण करना, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, भगवत गीता को पढ़ना, घर में तुलसी की सेवा करना, तुलसी है सबके घर में, तुलसी की सेवा करना, तुलसी को जल डालना, प्रणाम करना आदि, इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं और आपका जो प्रेम है, अफेक्शन है, वो भगवान के प्रति बढ़ता है नेचुरल। अभी हमारा प्रेम, अफेक्शन, लगाव, अटैचमेंट बाकी चीजों से, तो भक्ति का मतलब ये है भगवान से प्रेम करना सीखना। क्या है भक्ति का मतलब? भगवान से प्रेम करना सीखना। तो उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो इजी प्रैक्टिस क्या है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये सार है, हरे कृष्ण महामंत्र बार बार दोहराया जाता है, हर बार हम सुनते हैं, ये क्या है? सार है। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, गीता महात्मा में कहते एक मंत्र भगवान के नाम इतना शक्तिशाली है, तो उसको रोज चांट करना चाहिए, रोज जप करना चाहिए। और जप करते हैं इसका मतलब हम कृष्ण को स्वीकार कर रहे हैं अपने लाइफ में।
हरे कृष्णा।
तो आपकी कोई समीक्षा, प्रश्न हो, कमेंट्स हो, देख सकते हैं। तो हम थोड़ा खड़े होकर कीर्तन करेंगे।
जैसे अहंकार का आपने व्याख्या की है, कि अहंकार आता कहाँ से है?
अहंकार आता है, उसकी शुरुआत होती है, उसकी स्टार्टिंग क्या है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। जो है नहीं उसको है समझना, वो अहंकार मिथ्या मिथ्या अंडरस्टैंडिंग से आता है। भगवान ने स्वतंत्रता तो दी है ना हमें, दोनों चीजें हैं, शराब भी है, दूध भी है और स्वतंत्रता है हमें। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति, इसलिए तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन को कहा, अर्जुन को भगवान ने फोर्स नहीं किया, भगवत गीता में सारी भगवत गीता बोली और अर्जुन को भगवान ने फोर्स नहीं किया कि तुम्हें युद्ध करना है। आखिर में भगवान ने कहा यथेच्छसि तथा करो, हे अर्जुन तुम जिसे इच्छा वैसे करो। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको विवेक होना चाहिए कि क्या करणीय है क्या अकरणीय है, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, विवेक के द्वारा उसको स्वीकार करना चाहिए।
बुद्धि तो भगवान के द्वारा दी हुई है,
सारी चीजें भगवान ने दी है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं उसको अपना मान रहे हैं और भोग करना चाहते हैं, इस भावना से हम इस गलत धारणा में हैं। भगवान ने सारा जगत ही भगवान ने दिया है,
एक इंसान पागल है बुद्धिमान है
तो ये उसके कर्मों के अनुसार। अभी एक व्यक्ति अभी उसके पास अच्छा शरीर है, पागल की हरकतें करेगा, जैसे शास्त्र कहते अभी व्यक्ति बहुत मांस खाने का आदत है, सुअर खाएगा, गाय खाएगा, कुत्ता खाएगा, सब कुछ खाएगा, तो अगला शरीर तो तुम्हें बहुत मांस खाना है, तो अगला शरीर भगवान के तुम ले लो ना, कौन सा ले लो, शेर का ले लो, आराम से खाते रहो। तो ये कोई पागल है कोई बुद्धिमान है कि पूर्व पागलपन के कारण ये सब चीजें हैं। इसलिए तो भगवान ने गीता दी है कि जो पागलपन है उसको दूर करने के लिए समझो, जानो, भक्तों के संग में आओ और लाइफ को परफेक्शन प्राप्त करो। इसलिए ये मैसेज है क्यों भगवान को आना पड़ता है। भगवान कहते ना यदा यदा ये धर्मश्च ग्लानिर् भवति भारत, जब जब धर्म का विनाश होता है तब मैं आता हूँ। तो भगवान कौन से धर्म की बात कर रहे हैं, भगवान वहां क्रिश्चियनिटी मुस्लिम हिंदू आदि का तो भगवान ने नाम ही नहीं लिया, ये सब धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है, धर्म वो वस्तु है जो किसी वस्तु से अलग नहीं की जा सकती, जैसे शुगर से स्वीटनेस अलग नहीं किया जा सकता, जो चीनी है उससे मिठास अलग नहीं की जा सकती, पानी से तरलता अलग नहीं कर सकते, मिर्च से तीखापन अलग नहीं कर सकते, मिर्च का धर्म क्या है, तीखा। तो उसी प्रकार से आत्मा का जीव का धर्म है सेवा करना, क्या धर्म है, सेवा करना, चाहे वो मुस्लिम को पकड़ो हिंदू को पकड़ो क्रिश्चियन को पकड़ो, सब लोग किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी के पास कुछ नहीं। श्रील प्रभुपाद कहते थे अमेरिका में देखा जाता है कुछ नहीं तो पशुओं की सेवा करते हैं, कुत्ते आदि की सेवा करते हैं, भगवत सेवा नहीं करेंगे, मतलब सेवा के बिना जीव रह नहीं सकता। विदेशों में तो ऐसा हाल है कि बच्चे थोड़े टीनेज हो जाते हैं छोड़ के चले जाते हैं माता पिता को, पीछे मुड़ के नहीं देखते, तो माता पिता अकेले क्या करेंगे, वही है पशु आदि को पालन करते उनकी सेवा करते, क्योंकि बिना सेवा के जीव एक क्षण भी नहीं रह सकता। अल्टीमेट सेवा किसकी बोली गई है, तब संतुष्टि होगी जब वो भगवत सेवा, ये उसका धर्म है। तो इसी का संदेश, इसी की शिक्षा देने के लिए भगवत गीता भगवान छोड़ के जाते हैं। भगवान जब चले जाते हैं इस भौतिक जगत से तो जाते समय अपना मैसेज लेके जाते हैं, वो भगवत गीता है, भगवान का विजिटिंग कार्ड है, उसमें उनकी सारी चीजें हैं। इसलिए वो जो पागलपन है उसको दूर करने के लिए भगवत गीता का संदेश है। लेकिन व्यक्ति सोचता है मेरे जीवन में क्या आवश्यकता है भगवत गीता का, तो भगवान स्वतंत्रता दी है, आप मुझे स्वीकार करो या ना करो, भगवान फोर्स नहीं करते। भगवान को फोर्स करना है एक अर्थ पे प्ला दे तो हम जितने मर्जी अवार्डों में घर बना दे बिल्डिंग बना दे किसी की चलेगी। अभी अमेरिका में क्या आया था रिसेंटली, तूफान आया था ना सैंडी रिसेंटली, अमेरिकन शक्तिशाली राज्य स्टेट है या कंट्री है, कुछ कर पाया उसके लिए नहीं। तो भगवान को फोर्स करना है, क्योंकि आप किसी से कि आप मुझसे प्रेम करो फोर्स करके नहीं कर सकते, कर सकते हो क्या, नहीं, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। तो भगवान चाहते हैं कि हम स्वाभाविक उनसे प्रेम करें, उनको सरेंडर हो जाए। फोर्स करने के लिए तो भगवान ऐसे बीमारी दे दे आधा शरीर काम ही नहीं करेगा, या ऐसे ट्रबल दे तो उनको तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन भगवान चाहते कि ये जो मेरे अंश हैं और वो अंडरस्टैंड करे, क्योंकि हम भगवान ने हमें अलग नहीं किया, हम भगवान से अलग होकर इस जगत में आए, जिसको जेल कहा गया है, जिसको दुर्ग कहते हैं इस संसार को। कोई धनवान पिता है लेकिन बेटा पागल है, पिता को छोड़ के सड़क में भीख मांगता है, घूमता रहता है, बेरोजगार है, खाने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं है, तो हमारी स्थिति वही है, स्ट्रगल करते हैं। मैं अपने पांव पे खड़ा होके नहीं, कई लोग पांव पे खड़ा हो जाऊंगा एक पांव में, हाँ तो अब भगवान तो सरेंडर हो जाओ, वही आपकी भलाई है। तो इस प्रकार से इसलिए ये सारी चीजें हैं जो भगवान के धाम है, ग्रंथ आदि है, भक्त हैं, टेम्पल्स हैं, हाँ ये सारी चीजें क्यों हैं? क्योंकि हमें रिमाइंड करने के लिए। हाँ किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में वो व्यक्ति याददाश्त खो देता है, याददाश्त खो देता है तो डॉक्टर कहते कि ये नहीं तुम्हारी पत्नी का फोटो है, तो कहते नहीं, देखता ही रहता, घूर घूर के देखता है, ये तुम्हारा बच्चा है, तुमने ये किया था। डॉक्टर बार 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 उसको चिल्लाते रहते, दिखाते दिखाते एक साल बीतता है, तब थोड़ी सी याददाश्त वापस आती है। हमारी तो ऐसी स्थिति, हम ये सब चीजें क्यों है, याददाश्त हम खो बैठे हैं, एक्सीडेंट है, भक्ति जगत में आ गए। और जो सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ये हमारा नहीं है, उसको हमारा समझ रहे हैं, मैं मालिक हूँ, स्वामी हूँ, प्रोप्राइटर हूँ। हम आए कैसे आए, आए जब माँ के गर्भ से कुछ लेके आए थे क्या साथ, कि पूरे बैग के थैले थे, कैसे कि मॉल से बाहर निकले हो, ऐसा जन्म हुआ था किसी का? हाँ नहीं, चिल्लाता हुआ आ रहा है, रोता हुआ आ रहा है, और बच्चा रोता नहीं है तो डॉक्टर कहते ये अननेचुरल है, नेचुरल नहीं है। नेचुरल क्या है? बच्चा जन्म लेते हुए उसको क्या करना चाहिए? रोना चाहिए। मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड का नेचुरल स्वभाव है कि जीवन भर रोना है, दिस इज नेचुरल। जन्म लेते समय रो, जीवन भर डिमांड्स के लिए रो, मृत्यु के समय रो हॉस्पिटल में, नेचुरल है भौतिक जगत, इसलिए इसको भौतिक जगत कहा गया। इसलिए व्यक्ति को भगवत गीता की शिक्षा को समझना चाहिए। हाँ इसलिए शास्त्र है, टेम्पल्स है। टेम्पल्स का मतलब यही नहीं है कि वहां जब जाके हाथ जोड़ो और कुछ दक्षिणा दो, नारियल फोड़ा रहो, नहीं, जाओ प्रश्न पूछो, समझो और प्रैक्टिस करो। इसलिए प्रभुपाद जो थे उन्होंने कहा इस्कॉन टेम्पल्स ही नॉर्मल टेम्पल्स नहीं है, वैदिक यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, जहां जाओ समझो कि टेम्पल्स क्यों है, भगवान कौन है, क्यों भगवान को सरेंडर होना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं दुख नहीं चाहता फिर भी दुख, ये जगत क्या है, ये जगत को बनाने का पर्पज उद्देश्य आगे क्या है, मैं लाइफ में स्ट्रगल नहीं चाहता फिर भी इतना स्ट्रगल क्यों है, ये सारी चीजें मनुष्य पूछ सकता है, उसके लिए उसको बुद्धि दी गई है। धर्मो ही पेशा अधिको विशेषो, महाभारत में श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि मनुष्य के पास ये एक्स्ट्रा चीज है, धर्मो ही पेशा, मतलब क्वेश्चन जिज्ञासा कर सकता है, कोई पशु आदि नहीं कर सकता। इसलिए लाइफ बहुत इजी है, जीवन बहुत सरल है, लेकिन उसको कैसे ग्रहण करना होगा, सरलता से हम लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। भगवान बहुत सरलता से दिया है जीवन। हरे कृष्णा, तो लाउडली बोलिए एक साथ, हरे कृष्णा 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 हरे।